Hi Alicia, I'm requesting you to unmute. You have said that
हाँ
you need password from your laptop. You want to join? आप directly
या आई
laptop
वॉन्ट टू ज्वाइन फ्रॉम माई लैपटॉप. इट्स मच मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू डू इट फ्रॉम देयर प्लीज.
join from laptop without password as well. There is no password for this meeting.
ऑल राइट,
Yeah.
थैंक यू.
Thank you. Great. Welcome everyone. Welcome to Healing Circle Talks. Before we begin the circle, we would like to begin with guidelines. हम लोग circle शुरू करने से पहले healing circle के guidelines read करेंगे. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all participants listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us and rely on the power of silence to access it. Thank you. And today we have a very special guest with us, Alicia. Alicia is a breast cancer survivor. And firstly, as she says, she noticed a lump in her breast at the age of 31 during her second pregnancy. So, unko जब वो 31 साल के थे तभी उनके ब्रेस्ट में उन्होंने लंप नोटिस किया और वो उस वक्त सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट भी थे. देर वॉज नो नोटिसेबल चेंजेस और कुछ भी ज्यादा ऐसा चेंज नहीं था जो उन्हें इजिली दिख जाएगा. शी देन हैड अ सी सेक्शन एंड गेव बर्थ टू हर बेबी बॉय. व्हेन शी स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग हर ब्रेस्ट बिकेम हार्ड अगेन. द डॉक्टर्स नोटिस समथिंग रॉन्ग, कंडक्टेड FNAC इन MRI एंड डायग्नोज हर विद ब्रेस्ट कैंसर. शी अंडरवेंट 6 कीमोथेरेपी साइकल्स एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. Unfortunately, she had cancer recurrence after 25 years. Alicia says positivity is the only thing that can help you fight this disease. Keep positive things around you. There can be side effects that one should be aware of, but this too shall pass. That's such a wonderful remarks, Alicia, because as you rightly said that we all go through our own journeys, but what really holds us together, gives us that motivation, that courage, that inspiration is the positivity and the way we think, the way our surroundings are. So great to have you with us on this platform. I'm Dimple Parmar from Zenon Koro Tyome and Levels Cancer. And हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे आपका जब डायग्नोसिस हुआ था तब से लेके आपकी जर्नी कैसी रही, ताकि जो भी और पेशेंट्स हैं जो अभी कैंसर से की जर्नी से निकल रहे हैं, जिनका न्यू डायग्नोसिस हुआ है, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए उस वक्त. Definitely, बहुत लोगों को इसे सीखने को मिलेगा. And your journey is very inspiring. Like you became mother again, and that time you were also fighting through cancer. It's not easy thing to do, but you did it. So hats off to you for that. And we have Asta Kaushik with us, who is co-host for this session. And over to you, Asta and Alicia. Yeah, thank you.
Thank you, Dimple ma'am. हाय अलीशा मैम, मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहती हूँ हमारे हीलिंग सर्कल सेशन में.
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. It is a very honor and pride for me that I have won this batting with a great spirit. And I would like all of us who are here, who are presently fighting or have already fought, that please keep the courage to fight. And we all are very strong people and can fight it out easily.
या थैंक यू मैम. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. तो मैम आप बता सकती हैं कि आपकी कैंसर जर्नी कब स्टार्ट हुई और डायग्नोसिस कब हुआ?
माय कैंसर जर्नी स्टार्टेड इन द ईयर 2015 दिसंबर 5th. आई केम डाउन टू दिल्ली फॉर माय डायग्नोसिस. मतलब मेरे को मेरी अक्टूबर में डिलीवरी हुई, सो आफ्टर 40 डेज आई केम डाउन टू दिल्ली बिकॉज within 40 days मुझे problem मेरी aggravate होनी शुरू हो गई थी. so before that मैंने 3-4 बार अल्ट्रासाउंड कराया तो doctors were like ऐसा कुछ भी नहीं है, milk glands हैं, pregnancy में milk glands बन भी जाते हैं, they are very common thing. मैंने भी बहुत पढ़ा, मैंने मेरे husband ने दोनों ने बहुत पढ़ा, ने गूगल जैसे भी से गूगल माता हमने बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च भी किया. so it was like once in million of फीमेल्स आर लाइक दैट जिनको प्रेगनेंसी में कैंसर डिटेक्ट होता है. सो वी वर लाइक ऑन अ सेफर नोट कि नहीं यार चलो इट इज नॉट दैट, बट बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा डर था बिकॉज आई हैव अ हेरिडिटरी कैंसर इन माई फैमिली. माई मदर हैड कैंसर, सो मम्मा को हमेशा से डाउट होता था. तो शी वॉज लाइक वाई डोंट यू गो टू द डॉक्टर, गेट इट चेक, गेट इट चेक. एंड आई यूज टू टेल हर दैट मम्मा वो आई हूँ डॉक्टर के पास, उसने यही बोला है कि कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द नॉर्मल मिल्क ग्लैंड्स विच विल गो विद द delivery. When I start breastfeeding my child, it will start going. And it actually happened. When I started breastfeeding my son, it went off. The lump was completely dissolved. It was not there at all. ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी मेरे को कोई ऐसी problem थी. But eventually after 20 days, it started growing again and again and again. And it was very bad in the end. Eventually, I was in Ahmedabad at that time with my husband. So we went to the oncologist. So she never told me anything or gave me any idea. She told my husband that things are not looking good. So I would recommend you to go under an MRI test. Since my mom was working with an NGO in Delhi, in Rajiv Gandhi Rohini. So she said, okay, theek hai, you want to get a test done. Ask the doctors if they can give you the report simultaneously or in one day. Then you go ahead with the test in Ahmedabad. Otherwise, you come down to Delhi. So the doctor said the reports will take about 3 days to come. So next thing we got it done, we got our tickets booked and we came down to Delhi. While I came, all my appointments were lined up. And immediately I went undergone an MRI with a FNSE and then with a biopsy. So after 12-15 days, I started off with my chemo. So mine was an aggressive cancer since it started in pregnancy. So it was a little on the aggressive side. So they had to give chemo also on a little aggressive side so that it could be controlled. But luckily with my fortune and with God's grace, after 3 months, the first PET scan maine karaya chemo ke baad, so it was showing good results. So then they continued with another 3 chemos, so in total 6 chemos. And after that, for 5 years, I was on oral medication. That was on oral chemo drug. Tamoxifen is a दूसरी दवाई होती है, दिस इज कॉल्ड ज़िलोडा. ये ओरल कीमो ड्रग है जो मैंने 5 years तक खाई. सो नाउ इट हैज जस्ट स्टॉप्ड इन ईयर बैक. सो नाउ आई एम अंडर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन. आई हैव टू अंडरगो माय पेट स्कैन एवरी 6 months. फिजिकल चेकअप तो होता ही है, देन माय ब्लड टेस्ट एंड ऑल. सो आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डूइंग दैट. सो दिस इज माय जर्नी एंड माय आई मस्ट टेल यू माय डॉटर वाज everybody. And the most powerful thing that kept me going were my kids and the positive support of my family. मेरे हस्बैंड ने तो एक टाइम पे आके ये भी कर दिया था कि मेरे फोन की स्क्रीन सेवर पे मेरे दोनों बच्चों की फोटो थी कि यू हैव टू सी देम एंड यू हैव टू गेट अप जस्ट बिकॉज ऑफ देम, नॉट बिकॉज ऑफ मी कि तुमने मेरे लिए खड़े होना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हमें ही करना है. एंड यू हैव टू फाइट एंड यू विल बी एबल टू. And I did it. Now I have joined Indian Cancer Society as a volunteer. I go to Rajiv Gandhi Hospital every Monday for emotional support to the patient. So I am doing all that right now. So this is my story.
That's great, ma'am. आपने जितना अच्छे से हमें बताया तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको पहले से भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी और आप अपनी फैमिली हिस्ट्री जो आपने बताई कि आपकी फैमिली हिस्ट्री भी थी कैंसर में उसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करिए.
हेल्थ प्रॉब्लम मुझे एज सच कुछ भी नहीं थी. आई वॉज वेरी हेल्दी. आई वॉज लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट. मैं बहुत इंजॉय कर रही थी अपनी फैमिली में. मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी डॉटर, मतलब वीवर, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी. मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम कभी मुझे हुई नहीं. और फैमिली हिस्ट्री इन द सेंस कि मेरी मम्मा को था, मेरी मम्मा की बुआ जी को था, मम्मा की कजन्स को साथ था. सो दैट मीन्स उसके लिए एक ब्रैका टेस्ट होता है. वो ब्रैका टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट जिसमें वो आपका जीन ढूंढते हैं कि आपकी बॉडी में वो जीन है या आपकी फैमिली में वो जीन रन कर रहा है कि नहीं. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू माइट हैव गॉट कैंसर. तो मेरे अंदर वो जीन है जो मेरी फैमिली में रन करता है. आई हैव द सेम जीन. सो दैट मीन्स आई एम अ ब्रैका पॉजिटिव पर्सन. इससे मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले राइट डायरेक्शन में राइट डॉक्टर के पास भागूंगी. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार नॉर्मल है, खाली फिजिशियन से दवाई ले ली ठीक हो जाएगा, तो मैं अब उस डायरेक्शन में नहीं, मैं अब राइट डायरेक्शन में जाऊंगी ताकि अर्ली डायग्नोज हो सके किसी भी चीज का. और अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट क्योर. और टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा तो एवरीथिंग इज क्योर. सो दिस इज कॉल्ड ब्रैका टेस्टिंग. और मेरी डॉटर अब 13 की हुई है तो मैंने, जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है तो बच्चों में सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन लगते हैं तो मैंने अभी उसका कंप्लीट करा है. आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टू डोजेस फॉर हर कि मुझे उसके लिए आगे सब सेफ करना है. बट हाँ, मैं अपनी डॉटर को उतना एजुकेट करूंगी कि आपको उतना लेवल पे के शॉक नहीं लगे कि हाँ ये मेरे साथ क्या हो गया. सो शी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. एंड इफ वी हैव किड्स एट होम एंड आई डोंट थिंक देयर इज एन हार्म इन मेकिंग देम अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर. बिकॉज भगवान ने ऊपर किसके लिए क्या लिखा है नहीं पता. उतना स्ट्रांग उन्होंने हमें बनाया है कि हम इन सब चीजों को झेल सके. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक माई डॉटर अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड एवरीथिंग इन फॉर फ्यूचर.
जी मैम, इनफैक्ट ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि सब उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है. सबको पता होना चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे हैं तो उनको कैसा लगेगा. इनफैक्ट अगर उन्हें पहले से इस सब के बारे में अच्छे से पता होगा तो आगे जाके उन्हें ही हेल्प मिलेगी. आगे जाके एकदम से उन्हें ये नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, एकदम से एज अ सरप्राइज ये सब नहीं होगा. मतलब जनरल नॉलेज उन्हें भी होनी चाहिए.
जी बिल्कुल होनी चाहिए. और अब साइंस इतनी एडवांस कर रही है कि आप को डर नहीं लगना चाहिए. बिकॉज वो हर स्टेज पे साइंस इतनी आगे प्रोग्रेसिव हो रही है कि हर चीज का इलाज आ रहा है. तो हम पहले से ही डर जाए. हमारे इंडिया में स्पेशली क्या है, कैंसर एक हुआ है. कैंसर हुआ है, हम किसी को नहीं बताएंगे हमें हुआ है. लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, अरे लोग क्या बोलेंगे यार, ये हो गया, ये आपके बस में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है, ये उनके बस में नहीं है. एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि लोग मेरे से, कई लोगों ने मेरे से आके पूछा भी, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कैसे हो गया, आपने अपनी बेटी को फीड नहीं कराया था. फिर मैं उनको बोलती थी कि माइंड यू, मैंने अपनी डॉटर को पूरा एक साल फीड कराया है, तो ये कहीं नहीं लिखा कि आपने फीड नहीं कराया इस वजह से आपको कैंसर हुआ. ये कहीं नहीं लिखा है, किसी थ्योरी में ये नहीं लिखा. और हम ये मानते ही नहीं. मैं तो अपने आप को ये बोलती हूँ कि भगवान ने मुझे चूज किया बिकॉज मैं इतनी स्ट्रांग थी और उनको पता था कि मैं इसको फाइट कर सकती हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे चूज किया कि आई एम अ फाइटर एंड आई विल फाइट. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड ट्रस्ट दिस कि वी आर द गॉड्स चोजन वन, कि उन्होंने हमें चूज किया क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता है इस चीज को लड़ने के लिए.
जी मैम, डेफिनेटली आप काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे.
थैंक यू. बट आई हैव बिकम लाइक दैट नाउ बिकॉज आई डोंट, आई एम नॉट स्केयर्ड. ठीक है, वो झेला है तो अभी भी झेलेंगे यार, आगे भी झेलेंगे. और अच्छा रहा तो हो सकता है कभी कुछ ना हो. मेरी मॉम को 25 इयर्स बाद वापस हुआ बट स्टिल वो लास्ट मिनट तक बहुत पॉजिटिव थी और उनको देख के मुझे बहुत आनंद मिली थी.
बिल्कुल. तो मैम जब आपको कैंसर डायग्नोज हुआ तो आपका और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था?
फर्स्ट टाइम तो शॉक तो लगता ही है और मुझे ट्रीटमेंट से ज्यादा शॉक था और डर था मेरे बाल जाने का, क्योंकि मैं एक सरदारनी हूं तो सरदारियों के बाल वैसे ही बहुत लंबे होते हैं और प्रेगनेंसी के बाद तो मेरे बाल वैसे ही बहुत लंबे थे. तो मैं डॉक्टर को बोलती थी सर्जरी कर दो बट कीमो मत करो. कि मेरे भाई की शादी 1 महीने बाद थी तो मैं उनको बोलती थी आप मेरी सर्जरी कर लो, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कीमो बाद में कर देना. बस मुझे सिर्फ एक वो ही था कि मेरे बाल जाएंगे. बट इवेंचुअली जब कीमो स्टार्ट हुआ और जब मेरे आसपास इतनी पॉजिटिविटी थी तो मुझे लगा नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, बाल ही जाएंगे ना, वापस आ जाएंगे. और बाल मेरे वापस आए भी हैं. दिस इज ऑल ऑफ माय रीग्रोथ विच इज वेरी नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी. तो वो भी मेरा भी एक मिथ ही था बट उसके बाद अब मेरे को उससे भी कोई घबराहट नहीं होती है.
यस मैम बिल्कुल. इनफैक्ट आपके बाल बहुत ब्यूटीफुल है. राइट. तो मैम जब आपका कैंसर डायग्नोज हो गया तो मतलब आपका जो ट्रीटमेंट आपने बताया है कि आपने कीमोथेरेपी की 6 साइकिल्स ली थी, उसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करेंगे?
क्या कीमोथेरेपी मेरे जैसे आपको बता रही मेरी थोड़ी अग्रेसिव साइड पे थी. अग्रेसिव मतलब थोड़ी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि प्रेगनेंसी का कैंसर बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है तो सिर्फ उसको वहां कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी अग्रेसिव साइड पे थी. बाकी कीमो के साइड इफेक्ट देखो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं और आते भी हैं. इट इज नॉट के नहीं आते, जरूर आते हैं बट हम उसी को सोचते रहेंगे अब ये हो रहा है अब वो हो रहा है तो वो प्रॉब्लम ज्यादा अकर करती है. अब मैं मेरे को भी प्रॉब्लम्स आई, वीकनेस भी आई, मेरे ब्लड काउंट्स भी लो होते थे बट उसके लिए सिर्फ मैंने एक चीज की मैं खुश रही. जो लोग और सबसे महंगी मैं सबको बताना चाहूंगी कि मेरे पापा ने, मैं 1.5 साल अपने पेरेंट्स के साथ रही, हस्बैंड आते जाते थे, हल्की सी भी जहां से मेरे पापा को लगता था कि ये बंदे के अंदर कुछ नेगेटिविटी है वो मेरे पास आने ही नहीं देते थे, वो मुझे मिलने ही नहीं देते थे कि नहीं हमें नेगेटिविटी हमारे घर के आसपास हमारे बच्चों के आसपास चाहिए ही नहीं. तो कीमो के साइड इफेक्ट्स आते हैं, हर एक को अपने बॉडी के तरीके से आते हैं. ब्रेस्ट कैंसर में बाल 99.9% चले ही जाते हैं बट उससे नहीं घबराओ. डाइट अच्छी लो, डॉक्टर के फॉलोअप्स पे अच्छे से जाओ और जो वो बोल रहा है जैसे वो गाइड कर रहा है अगर हम वैसे करें तो ये जर्नी बहुत इजी हो सकती है और जर्नी इजी हो भी जाती है. साइड इफेक्ट्स में वीकनेस आती है, दिल घबराता है, नोजिया होता है, मतलब बॉडी टू बॉडी अलग अलग आते ही हैं. हम कोई ऊपर से नहीं आए, साइड इफेक्ट्स हैं. हम किसी को बोले साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे तो ये हम उनको गलत बोल रहे हैं. साइड इफेक्ट्स होंगे, जरूर होंगे क्योंकि आपके अंदर एक केमिकल जा रहा है जो केमिकल वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और अगर हम चाहते हैं कि वो उसको डिस्ट्रॉय करे तो हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कि आगे इतनी सी दवाई अगर स्ट्रांग हम खा रहे हैं तो आई थिंक वो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वो हमारे अच्छे के लिए.
जी मैम बिल्कुल. जो आपने अभी बोला कि कीमोथेरेपी के वक्त जो अंदर हम जाते हैं केमिकल्स वो टारगेट करते हैं कैंसर सेल्स को, तो कैंसर सेल्स को खत्म करने के साथ साथ जो हेल्दी सेल्स होते हैं कभी कभी वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, उन वजह से भी
कभी
काफी
कभी नहीं
सिम्टम्स आते हैं.
वो होते ही हैं. बस उनको वापस रीग्रो करने के लिए और उनको हेल्दी रखने के लिए डाइट अच्छी लेनी चाहिए, हमें डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, प्लस हमें जितना हम हाइजीन लेवल अपने आसपास मेंटेन कर सके डाइट अच्छी लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी. इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारे को और ताकत मिलती है कि हम सब चीजों से फाइट कर सकें.
राइट मैम. तो मैम तब आप ये मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे अपनी कैंसर जर्नी के दौरान, तो आपने इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी ट्राई किया?
मेरे कोई नोन में थे, उन्होंने उनको भी प्रॉब्लम थी बट उनको स्टमक का था, तो उन्होंने इसकी जगह वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में वो ज्यादा गए. तो मुझे ना बिकॉज वो मेडिसिन के बारे में आपको नहीं पता, वो मिक्स करके देते हैं. एटलीस्ट एलोपैथिक और इन सब के बारे में क्या है, हमें नाम पता है, हम किसी से डिस्कस कर सकते हैं, हम खुद भी पढ़ सकते हैं. और आयुर्वेदिक में क्या है, वो मिक्सअप हो जाती है सारी मेडिसिन, तो मेरे को उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है. हाँ, होम्योपैथिक यू कैन टेक साइड बाय साइड बिकॉज उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो सेफ मेडिसिन भी है. तो बट प्लीज इसके साथ साथ आप ये मत सोचिए कि अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको कीमो या अपनी ये जो अपनी एलोपैथिक मेडिसिन है इसको छोड़ना है. प्लीज इसको नहीं छोड़िए, इसके साथ साइमल्टेनियसली कुछ भी लीजिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, बट इसको नहीं छोड़िए.
राइट मैम, इनफैक्ट मतलब आप जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो भी ले रहे हैं, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए. आयुर्वेदा भी हेल्पफुल है, होम्योपैथी भी हेल्पफुल है, मतलब सब अपनी जगह पे हेल्पफुल है. हमें अलग अलग, हमें साइड इफेक्ट मैनेज करने में हेल्प करेगा, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेन तो वही है. उस खाली ऑल्टरनेटिव पे ना रिलाई करके मेडिकल के साथ लेना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री जिसे बोलेंगे,
जी बिल्कुल
तो वो
बिल्कुल.
ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा.
बर्गर के साथ फ्राइज लेते हैं ना, वैसे बर्गर हमारा कीमो ट्रीटमेंट है, फ्राइज हमारा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, तो उसके साथ जरूर लीजिए बट उसको मत छोड़िए.
जी मैम बिल्कुल. तो मैम मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि तब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उस वक्त ना मेंटली भी काफी मतलब लोड लगता है, काफी टेंशन हो ही जाती है, बहुत बार मेंटल इश्यूज होते हैं, तो आपने उस सब से कैसे डील किया?
यार 2 महीने तो मैं बहुत बिजी थी बिकॉज मेरे रियल ब्रदर की वेडिंग थी, तो मेरे को पापा ने उतना इन्वॉल्व कर दिया था कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए बहुत मौका नहीं चाहिए था. फिर इवेंचुअली मेरे बच्चे छोटे थे, बच्चों के साथ बिजी होना, अपने आप को बिजी रखना, तो आप बिजी रखो, जो वर्किंग है आप जरूर काम करो, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज आप काम मत छोड़िए, अपने आप को बिजी रखिए किसी भी तरीके, यही फाइट कराएगा.
जी बिल्कुल, मतलब जितना हम लोग खाली बैठ के सोचते रहेंगे कि कैंसर है, ट्रीटमेंट चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, उतना हमें और दिक्कत होगी, उतने हमें और टेंशन होती है, उतना हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं, और जितना हम लोग अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे उतना हेल्पफुल भी रहेगा हमारे लिए, हम भी पॉजिटिव रहेंगे.
बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम नेगेटिव रहेंगे ना तो हमारी कीमो हमें असर नहीं करेगी. तो कीमो को बेस्ट असर देने के लिए हम खुशी खुशी लेंगे ना तो हमारे अंदर वो डबल पावर से काम करेगी. हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम हॉस्पिटल भी पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप कीमो भी ले रहे हो तो प्लीज नेगेटिव अपने आसपास मत लाओ या अपने अंदर भी मत लाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द ट्रीटमेंट खत्म हो. जल्द से जल्द ट्रीटमेंट तभी खत्म होगा जब कीमो हमारे को असर करेगी, हमारी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी. तो खुश रहो और पॉजिटिव रहो, दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज ओनली द मेन.
जी बिल्कुल, मतलब काफी लोग ऐसे हो, मतलब काफी लोग ना सोच के मतलब बैठ जाते हैं, अरे कैंसर हो गया है, अब मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो क्या होगा, वो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो क्या होगा, मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि ठीक है हो गया है तो अब हो गया है, अब आगे का सोचो कि क्या करना है, उसको नेगेटिवली ला मतलब नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली लेना चाहिए.
बिल्कुल 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 सही बात.
बिल्कुल. तो मैम आपकी पूरी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी क्या क्या चीजें रही जिनसे आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिली?
सबसे ज्यादा हेल्प मिली और फैमिली वाइज पूछ रहे हो आप मेरे से कि ऑल ओवर पूछ रहे हो मेरे से? देखो
मैम ऑल ओवर फैमिली वाइज भी या कोई ट्रीटमेंट मतलब जो सबसे बेस्ट रहा?
फैमिली वाइज तो मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, मेरे पेरेंट्स, नहीं तो 1.5 साल के लिए मैं और मेरे हस्बैंड अलग रहे, बच्चे मेरे साथ, मेरे हस्बैंड अकेले अहमदाबाद में रहे, अप डाउन करते रहे, तो इससे ज्यादा सपोर्ट और मुझे क्या मिल सकती थी. He was so positive. उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, he got the tickets book, वो मुझे सीधा ले आए, साथ में सब कुछ उन्होंने मेरे पेरेंट्स के साथ प्लान किया, सब कुछ किया, तो ये पॉजिटिव मतलब उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा. और मैं जब कीमो के लिए एडमिट हो रही थी, मैं 1 रात पहले एडमिट होती थी, तो कब जैसे बेटा मेरा बहुत छोटा था तो कभी मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ आके रह रही थी, कभी मेरी मदर देख टेक केयर कर रही थी, मतलब हम लोग उन्होंने मिलजुल के ही मेरा टाइम निकाला।
जी मैम, तो मैम आपकी ट्रीटमेंट के दौरान, आपकी एंटायर जर्नी के दौरान ऐसे भी काफी टाइम आता होगा ना जब आपको मतलब काफी ज्यादा लाइक ऐसा लगता होगा, गिव अप करने का मन करता होगा या आगे बहुत ज्यादा टेंशन होती होगी, तो उस टाइम पे आप ऐसी क्या चीजें थी जिनसे आपको हेल्प मिली?
नहीं बिल्कुल लगता है यार, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, डाउनफॉल आता है, मेरे भी आए कि यार बस कब होगा, बट फिर वही बात है जिससे आपको ताकत मिलती है, फैमिली, मेरे बच्चे, इनको ही देखी थी ना कि यार बेटी 6.5 साल की है, बेटा 40 दिन का, 1 महीने का, मुझे उनको भी तो बड़ा करना है। तो मैं तो भगवान को इतना बोलती थी कि बाबा जी उतना तक मेरे को जिंदगी दो जहां तक मेरे बच्चे सेटल हो जाए, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएं उसके बाद मुझे कुछ हो तो मेरे को डर नहीं है, पर उतनी देर तो मुझे चाहिए जब तक कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मेरे बच्चों को भी मेरी जरूरत है, तो उतनी तो मेरे को ताकत चाहिए कि मैं उनको इस्टेब्लिश कर दूं, चलो उन्हें जॉब करनी है जॉब कर ले, जैसे भी है बेटी शादी है, मतलब उतने तक मुझे खड़ा कर दो जहां तक मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। इतना तो मैं आज भी बोलती हूँ जब भी मैं कर रही हूँ, अब तो गणपति चल रहे हैं, गणपति जी के आगे भी रोज मैं अरदास यही करती हूँ, भी मैं सरदारनी हूँ, मैं सब भगवानों को मानती हूँ यार, मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं सरदारनी हूँ तो मैं खाली गुरुद्वारे जाऊंगी, मैं गणपति जी की भी 2 दिन से पूजा कर रही हूँ, कृष्ण जयंती आ रही है, जन्माष्टमी आती है, तब भी मैंने किया, मतलब मैं सब जगह जाती हूँ और सिर्फ एक ही बोलती हूँ कि बस जैसे चल रही हूँ बहुत अच्छी चल रही हूँ, कुछ दोगे तो ताकत साथ में देना कि मैं उसको लड़ लूँ, डरती नहीं हूँ, बस ताकत साथ में देना कि उसको भी पार कर, जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम पहले देखी है उतनी ही ताकत और देना कि उससे ज्यादा ब्रेवली, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैं उसको झेल सकूं।
जी बिल्कुल, इनफैक्ट आप इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हो, इतनी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, सबको कितनी हेल्प मिल रही होगी ये सुन के, उनके अंदर भी काफी पॉजिटिविटी आ रही
I
होगी।
just hope मैं किसी को कुछ हेल्प कर सकूं तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट।
बिल्कुल मैम, तो मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद आपने काफी लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए होंगे, तो वो चेंजेस क्या रहे?
लाइफस्टाइल चेंजेस में हेल्दी खाओ, जंक मैंने छोड़ दिया, बट कभी कभी तो चलता है, चीटिंग तो चलती है क्योंकि मन भी करता है, ठीक है। उसके बाद शुगर इनटेक मैंने कम कर दिया था क्योंकि शुगर वैसे भी इट्स नॉट गुड, और जैसे कैंसर सेल्स जल्दी ग्रो करते हैं शुगर के ऊपर, तो मैंने शुगर बहुत कम कर दी। शुगर खैर अभी भी मेरी बहुत कम है, जो मैं सुबह चाय में लेती हूँ वो भी नॉट इवन हाफ अ स्पून, हाफ स्पून से भी कम लेती हूँ, बट लेती जरूर हूँ। और मीठा उसके अलावा वंस इन अ ब्लू मून कभी आइसक्रीम मन किया तो कम किया, या मैंगो बहुत अच्छा लगता है तो कभी कभी समर्स में वो जरूर खाती हूँ, बाकी वैसे ही मीठा मैंने बहुत कम कर दिया। तो ये मैंने ज्यादा मेन चेंजेस किए। उस टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, रेड मीट मना किया था, तो वो मैं अभी भी नहीं खाती। बाकी ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग मेरे डॉक्टर ने मुझे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मना की थी, तो वो मैं नहीं ले रही थी बिल्कुल भी। उसके अलावा उन्होंने मुझे हाई प्रोटीन डाइट दी थी, तो मैं हाई प्रोटीन डाइट ले रही थी। जब मेरे प्रोटीन लेवल्स थोड़े से लो होते थे, देयर इज अ प्रोटीन पाउडर कॉल्ड इंश्योर प्लस, अब तो हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं अपने कीमो सेशन से पहले 2 दिन पहले वो दिन में 2 बार ही पीऊं, क्योंकि वो काउंट्स बढ़ाता है, और हमारे इसमें क्या होता है अगर आपके काउंट्स कम है तो वो आपको कीमो नहीं देते हैं, सो दे टेल यू कि आप वापस जाओ, काउंट्स लेवल आपका बढ़ेगा तो हम कीमो वापस देंगे। तो मुझे था कि मैं टाइम टू टाइम मेरा जो साइकिल बना है उसको मैं ब्रेक नहीं करूं, तो उसके लिए मैं हाई प्रोटीन जरूर लेती। मैंने 25 साल फिश को हाथ नहीं लगाया था, बट मेरे डैड ने बच्चों की तरह अपने पास बैठा के अपने हाथ से खिलाया, नहीं तुझे खाना है बिकॉज उसमें बहुत प्रोटीन है, तेरे लिए अच्छा है। लिटरली जैसे मैं अपनी बच्चों को खिला रही थी, मेरे पापा मुझे वैसे खिला रहे थे कि तुम्हें खाना ही है।
बिल्कुल सही, इनफैक्ट आपने जो शुगर वाली बात बोली कि हमें शुगर इनटेक पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कम इनटेक करना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट कैंसर के लिए भी नहीं, किसी भी डिजीज चाहिए।
वो वैसे ही अच्छी नहीं है यार, आप खाओ,
हाँ
मना
जी,
नहीं है, कंट्रोल में
हाँ
लेके खाओ, सबके लिए बहुत अच्छा।
बिल्कुल। और आपने जैसे बोला कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, कभी कभी सबका ही मन करेगा, ऐसा तो कोई नहीं है जिसका कभी मन ही नहीं करता होगा कुछ थोड़ा जंक फूड या ऐसा कुछ खाने का जो उन्हें पसंद हो। तो इसी सब चीजों का ध्यान देते हुए ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब एक हेल्दी डाइट फॉलो करना। और ये जैसे आपने बताया कि प्रोटीन को, हाँ जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रोटीन अपना इंटेक मॉनिटर करना है। हाँ
बिल्कुल
जी
ह्यूमन बीइंग है यार, मन करता है, ये तो है नहीं कि मुंह बंद करके बैठ सकते हैं, मन बिल्कुल करता है।
हाँ
और जो
जी
चीज आई टेल यू प्रोटीन मना होती है ना, हमें उसकी मैं अब भी लेती हूँ, बट मैं कंट्रोल में रह के लेती।
बिल्कुल, कंट्रोल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। खाओ सब कुछ लेकिन कंट्रोल में खाओ, हेल्दी, टेस्टी भी हो हेल्दी भी हो, इसी चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट आपने प्रोटीन के बारे में बताया तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो डाइट पे हमें हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल
यस मैम, राइट। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अपनी पूरी कैंसर जर्नी के दौरान क्या क्या आपको चीजें सीखने को मिली, आपने क्या कुछ सीखा?
सबसे पहले तो सीखा कि फ्यूचर का सोच के अभी मत परेशान हो जाओ। आगे क्या, अरे आज तो जी लो, आज अच्छा करेंगे तो फ्यूचर हम ऑटोमेटिकली अच्छा कर लेंगे। हम बहुत फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, बट मेक योर प्रेजेंट अ प्लेजेंट जर्नी, योर फ्यूचर विल ऑटोमेटिकली बिकम अ प्लेजेंट जर्नी। खुश रहो, जो मन करता है आप सब करो, सारी ख्वाहिशें ये मत सोचो कि अभी नहीं करूंगी बाद में करूंगी, जिस चीज का जो मन करता है आप वो कर लो। और पहले अपने लिए सोचो फिर दुनिया के लिए सोचो। दुनिया तो आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, आप अच्छा नहीं करोगे तो भी बोलेगी, तो दुनिया का तो काम ही है बोलना। तो दुनिया के बारे में नहीं सोचो, अपना अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचो, फिर आप किसी और चीज के बारे में सोचो। मैं अब वही करती हूँ, पहले मैं अपने लिए सोचती हूँ, अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ, थर्ड पर्सन के लिए मैं नहीं सोचती। जिसने मेरे बारे में जो थिंकिंग या जो सोच अप्रोच रखनी है ना, वो रखेंगे ही रखेंगे, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। वो आपकी सोच है, ये मेरी सोच है, मैं ऐसी ही हूँ। यू लीव इट और यू एक्सेप्ट इट, इट इज योर चॉइस, एंड आई गो बाय दिस थ्योरी नाउ।
जी मैम, इनफैक्ट मतलब आपने काफी सही बात बोली है। नहीं, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि कोई और क्या सोच रहा है, जो भी करना है हमें करना है, अपने लिए करना है, तो हमें अपना देखना चाहिए, हमें किस चीज से खुशी मिल रही है, हमें क्या चीज बेनिफिशियल लग रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल,
बिल्कुल। तो मैम आपका ऐसा क्या ट्रीटमेंट रहा आपकी कैंसर जर्नी के दौरान जो सबसे बेस्ट रहा आपके लिए?
सबसे बेस्ट तो मैं बोलूंगी यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैंने तो सारा ट्रीटमेंट ही मेरा बहुत अच्छा है। मेरी सर्जरी नहीं हुई, मेरी रेडिएशन नहीं हुई, बिकॉज मेरा सोर्स नहीं पता था और मेरी हाई रिस्क पे थी। तो फ्यूचर में मे बी सर्जरी और वो सब प्लान करेंगे, बट अभी तो सिर्फ कीमो लगी और 5 साल कीमो खाई। तो मेरे लिए तो मैं यही बोलूंगी, मेरे लिए तो थ्रू आउट मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि अब मुझे 7 साल हो जाएंगे, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत अच्छी चल रही हूँ, तो मेरा तो थ्रू आउट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है।
बिल्कुल राइट मैम। एंड मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, कुछ लोगों ने अपने हैंड्स भी रेस करे हैं, तो हम सबके क्वेश्चंस और सबके साथ डिस्कशन करेंगे सेशन की एंडिंग में। थैंक यू। तो मैम मैं आपसे लाइक ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयर गिवर्स को?
केयर गिवर्स को तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी यार, आप लोग खुश रखोगे तो वो खुश रहेंगे। प्लीज मेक श्योर उनके आसपास कोई नेगेटिव चीज, कोई ऐसी चीज आप उनके आसपास मत लाओ, और उनको अंधेरे में मत रखना कभी भी। प्लीज जिसके साथ जो चीज हो रही है ना, उसको पता होनी चाहिए कि मेरे साथ ये चीज या ये मेरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है। अब क्या है, एवरीबडी इज वेल, एजुकेटेड एंड एवरीबडी हैज देयर फोन, आप नहीं बताओगे ना वो गूगल करेंगे, और गूगल पे आधी से ज्यादा, आधी भी नहीं, 3-4 चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली आपके ट्रीटमेंट को बिलोंग भी नहीं करती, बट बिकॉज वहाँ ओवरऑल एक जिस्ट होता है तो वो सारी चीजें आपके सामने देता है। तो प्लीज उससे ना देख के आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या आप लोग पेशेंट और केयर गिवर इकट्ठे बैठ के डिस्कस करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर से किस तरीके से पूछोगे। सो प्लीज गूगल इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। प्लीज आधी चीजें सच भी होती है, मैं मना नहीं करूंगी, बट आधी चीजें हमारे केस के साथ मैच नहीं करती है, पर हमारा दिमाग फिर उल्टे तरीके चलता है, अच्छा उस पर लिखा था शायद ये भी हो सकता है मुझे। सो प्लीज ये चीज नहीं सोचिएगा, और केयर गिवर्स को एक ही है, बहुत खुश रखिए और खुश रहिए भी। आपके फेस का स्ट्रेस पेशेंट या हम जैसे जो हम ट्रीटमेंट जिनका जा रहे हैं, आपके फेस का स्ट्रेस हम एक सेकंड में पकड़ लेंगे, और हम आपको नहीं शो करेंगे बट वो हमें अंदर ही अंदर बहुत तंग करता है। अब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मैं लास्ट मंडे जैसे गई थी, जब मैं किसी की काउंसलिंग कर रही थी, तो आई कुड सी दैट वो अंकल के फेस पे इतना स्ट्रेस नहीं था जितना उनकी डॉटर के फेस पे स्ट्रेस था, और वो उनके फेस से दिख रहा था। तो अगर एज अ लेमैन मैं उनके फेस पे वो स्ट्रेस देख सकती थी, तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट भी तो देख सकता है। फिर हमने पहले उनको काम किया कि आप पहले शांत हो, आपको कुछ भी डाउट है आप हॉस्पिटल में हो, आप राइट हैंड्स में हो, आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करो। तो आप लोग प्लीज खुश रहो, रखो और पॉजिटिव रखो, और डॉक्टर से बेझिझक हो के आपके मन में छोटे से छोटा क्वेश्चन कोई आता है आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स लाइक मी एंड एनीबडी एल्स, प्लीज खुश रहिए, सबसे जरूरी है। जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट खत्म होगा, उतना सक्सेसफुल हमारा ट्रीटमेंट होगा। फ्यूचर का सोच के आज मत घबराइए, और फ्यूचर में क्या करना है उसकी उतनी मत करिए, अपना प्रेजेंट बहुत अच्छा करिए प्लीज। This is my only request to everybody out there.
इन फैक्ट मैम, आपने जो गूगल वाली बात बोली वो बहुत सही बात बोली है। काफी लोग हैं, कोई सिम्टम लगता है या मतलब किसी भी डिजीज में कुछ लगता है, वो सीधा गूगल करते हैं। गूगल पे क्या है, हजार चीजें आती हैं, जितनी पॉसिबिलिटी है सब आती हैं। फिर आधे लोग तो वो देख के ही डर जाते हैं कि अरे मुझे ये तो नहीं है, मुझे वो तो नहीं है। तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन के लिए इट इज गुड, पर उसका मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कंप्लीटली उसी पे रिलाई कर रहे हो।
I would like to share one more very personal thing, if you allow me to. ये मैंने गूगल वाली बात क्यों कही, बिकॉज मेरी बेटी 3 महीने की थी जब उसको हाथ में होल डिटेक्ट हुआ। ठीक है, आई वॉज वेरी यंग, सो उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हमने कराई थी when she was almost 4 years. तो जब रिया फर्स्ट टाइम आप पेरेंट्स बनते हो ना, आपके पास आपकी बहुत चीजें होती है जो आप अपने बेटी के लिए सोचते हो, और जब ऐसी कोई चीज आपके सामने आती है ना, तो आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। एंड माइंड यू, आई टेल यू, आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो हॉस्पिटल के नाम से भी ना जिसको गूज बम्स आते थे। मतलब मेरे को एक इंजेक्शन लगवाना होता था ना, तो मैं भाग जाती थी छोटे होते कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना। बट जब मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम आई, तो मुझे पता नहीं अपने आप ही आई कि नहीं यार, मुझे उसको ही देखना है, उसको संभालना है। 4 साल का बच्चा क्या होता है। तब गूगल पे सब इंफॉर्मेशन आती थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड, हमने गूगल, मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड ने गूगल छान के चाय की तरह पी लिया था। तो मेरी बेटी के डॉक्टर ने हमें तब सजेस्ट किया था, और उन्होंने तब हमें समझाया कि प्लीज गूगल पे मत जाओ, गूगल पे और बहुत चीजें हैं जो आपके केस के साथ अटैच भी नहीं होती है। तो मुझे वहां से पता लगा, और तब से वो बात थी। तब मैंने अपने केस में भी, तब मैं बहुत गूगल पे नहीं सर्च करती थी, जो जैसे रोज चलता आता था, दिन चढ़ता था, कोई नई प्रॉब्लम आती थी हम उसको फेस करते थे, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी तो डॉक्टर के पास जाते थे। तो मैंने तब से ये चीज अपने उसमें रखी कि मैं बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ऊपर नीचे नहीं पढ़ूं, और मैं टिल डेट बहुत ज्यादा रिसर्च R&D नहीं पढ़ती हूँ, लिमिटेड पढ़ती हूँ, पर बहुत डेप्थ में घुस घुस के नहीं पढ़ती हूँ। नॉलेज रखिए, जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, बट उतनी जितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितनी हमारे केस से रिलेटेड।
बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बात बोली है। एंड मैम, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको अपनी पूरी कैंसर हीलिंग जर्नी को एक लाइन में बताना हो तो आप क्या बताएंगी?
Be strong like I am. Be positive as I am. This is going to help us. और ये हवा नहीं है, हमारे यहाँ पे हवा है। आप US वगैरह चले जाओ तो ये इसको जैसे नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है ना, ये वो लोग इसको वैसे ट्रीट करते हैं। तो कोशिश करके हमें भी इसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे ये नॉर्मल ही है। हम हवा बनाएंगे तो हवा बनेगा। घर में कोशिश करके जितनी कम से कम बात हो, और हर टाइम इसके बारे में बात करनी कोई जरूरी नहीं है। हमें आप मस्ती करिए, मजाक करिए, इधर उधर घूमिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, सब कुछ करिए, इसको सेकेंडरी रखिए। मैं तो ऐसे ही जी रही हूँ यार, तो मैं ऐसे ही बता पाऊंगी आपको।
बिल्कुल मैम, आपकी इन बातों से काफी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि काफी इंस्पायरिंग आप बातें शेयर कर रहे हो। तो नीलम जी, आपने काफी टाइम से हैंड रेस किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप जो शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
गुड इवनिंग मैम, मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था, फिर उनका सर्जरी हुआ और कीमो भी हुआ, फिर वो 3 महीने, 2 से सवा 2 महीने का उन्होंने गैप दिया था टाटा हॉस्पिटल वालों ने। फिर उसके बाद उन्होंने वापस उनका चेकअप किया तो अभी लंग और लीवर में कैंसर आया है। तो अभी कीमो चालू है, पर मैंने इस व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ा था कि कोई विजया लीव्स करके कोई मेडिसिन है जिसके लेने से वो ठीक हो, कैंसर में फर्क पड़ता है, वो मुझे जानकारी चाहिए था।
जी मैम, बिल्कुल।
एक आपको सजेस्ट करूं, आप ऐसे ही किसी भी मेडिसिन के ऊपर मत जाइए, आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए कि वो आपके केस के लिए ठीक है भी कि नहीं भी है। क्योंकि हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं कि हमें ये है, बट उसके साथ आपके हस्बैंड की एज, आपके हस्बैंड की इम्यूनिटी, प्लस आपके बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। तो मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगी, जैसे मेरी मम्मा भी करते थे, सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करिए, साइमल्टेनियसली जो मर्जी लीजिए, बट अपना कीमो ट्रीटमेंट पूरा करिए जैसा डॉक्टर।
कीमो चालू है उनका, कीमो चालू है, अभी 2 कीमो के बाद उनका टेस्टिंग होना है वापस। कीमो तो हम लोग ने एक दिन भी नहीं रोका है, कीमो तो टाइम से चल ही रहा है। पर साइमल्टेनियसली मेरे को जैसे जो पैरामेडिकल होते हैं, होम्योपैथी हो गया या आयुर्वेद हो गया, तो इसमें मेरे को भी, मैंने इस ग्रुप पे पढ़ा था कि वो लीव्स लेने से कैंसर में फर्क पड़ता है, इसलिए मेरे को वो जानकारी चाहिए था। विजय लीव्स करके उन्होंने डाला है ग्रुप में उसका एब्स्ट्रैक्ट।
जी नीलम जी, मैं आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ, एंड आपका जो भी इस चीज से रिलेटेड डाउट है हम उसका पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, पूरा समझेंगे, आपको समझाएंगे। तो मैं हमारा नंबर इसी चैट पे शेयर कर रही हूँ, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं।
ओके मैम, थैंक यू।
विजया लीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है, दैट इज मेडिकल कैनबीज, जो कैंसर में काफी इफेक्टिव रहता है साइड इफेक्ट मैनेजमेंट के लिए और पेन मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए। तो उसको ट्रीटमेंट के साथ में लेना होता है, वो ऑल्टरनेटिव नहीं है ट्रीटमेंट का, कॉम्प्लीमेंट्री है जो कि ट्रीटमेंट के साथ में जाता है। तो इट इज हमारे ऑलमोस्ट 1000 पेशेंट्स वो मेडिसिन को ले रहे हैं और काफी उनको बेनिफिट्स भी मिले हैं। तो बाकी आपका केस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए फिर आप, जैसे आस्था ने बताया कि आप जो नंबर है 9372976783, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आपको फिर एक्सपर्ट से कनेक्ट करवा देंगे। थैंक यू।
ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
अलीशा मैम, आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपने सर्जरी नहीं कराई थी, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या रीजन था कि आपने सर्जरी नहीं कराई थी। अनिशा मैम आपकी आप म्यूट पे हैं, जस्ट सेकेंड.
सर्जरी ना कराना मेरी चॉइस नहीं थी, सर्जरी ना करना मेरी डॉक्टर्स की चॉइस थी. बिकॉज जब मैंने फर्स्ट पेट स्कैन कराया था तो मेरी लंग्स में एक छोटा सा पैच दिखा था, उनको एक स्पॉट सा दिखा था. वो स्पॉट मुझे लंग्स में आज भी दिखता है. और मेरे कैंसर खाली ब्रेस्ट में नहीं, मेरे लिम्फ नोड्स में भी था और मेरे दोनों साइड के लिम्फ नोड्स में था. तो सर्जरी करने के लिए हमें सोर्स पता करना पड़ता है कि हमारा कैंसर सोर्स क्या होता है, हमारा कैंसर कहाँ से स्टार्ट हुआ. तो मेरे केस में टिल डेट हम मेरे डॉक्टर्स को सोर्स नहीं पता कि वो लंग्स से शुरू होके लिम्फ नोड्स में गया, या वो लिम्फ नोड्स से शुरू होके वो ब्रेस्ट में गया, या ब्रेस्ट से शुरू होके वो लिम्फ नोड्स में गया. तो देश है कि जब तक हमें सोर्स नहीं पता लगेगा हम सर्जरी नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक हेल्दी ऑर्गन को काटना नहीं चाहते. तो जब तक मेरे केस में ये नहीं है, अब जब मैं शेयर कर ही रही हूँ, तो मेरी जब भी सर्जरी होगी, मेरी सर्जरी विल नॉट बी अ माइनर सर्जरी, मेरी सर्जरी थोड़ी हाई लेवल सर्जरी होगी, क्योंकि मेरी डबल मिस्टेक्टमी होगी. बिकॉज मैं ब्रैका पॉजिटिव हूँ और ब्रैका पॉजिटिव में मेरे हाई लेवल चांसेस होते हैं रीअकरेंस. तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द गुड टाइम कि सब कुछ ठीक टाइम पे आएगा, देन दे माइट बी प्लानिंग फॉर माई सर्जरी. सर्जरी ना करना मैंने कभी भी उनको मना नहीं किया था. दिस इज वॉट दे हैड डिसाइडेड फॉर मी, वॉट द ट्यूमर बोर्ड हैड डिसाइडेड. ट्यूमर बोर्ड में मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे सर्जन और भी दो चार डॉक्टर जो है वो मिलके बैठ के मेरा केस डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर वो मेरे लिए डिसीजन लेते.
थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस. एंड गीता मुनि जी से भी एक मैसेज आया है. गीता मुनि जी, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चैट पे शेयर किया है. आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी हेल्प चाहिए, आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड अलीशा मैम, हमारे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है फ्रॉम सुशील जी. He is saying my wife too is too on oral medication. It is Palbase 125 mg and letrozole. So from January 2021. So now in 2 PET there is no active cells as per PET report. So उनकी ये query है कि उन्हें Palbase पे कब तक रहना पड़ेगा? Anisha ma'am, we can't hear you.
वो तो आपका डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है. जैसे मैंने ओरल कीमो ड्रग की खाई थी 5 साल, बट उसके बीच में मेरे पेट स्कैन होते रहे थे. तो वो दैट आई थिंक योर डॉक्टर विल गाइड यू द बेस्ट कि वो आपको कितने टाइम खानी है. और हाँ, वो पेट स्कैन जब जब बोले आप उसके लिए कराते रहिए, बिकॉज उसी से पता लग सकता है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है. मेरी जो पहले रिपोर्ट थी, मेरी आज भी रिपोर्ट वही आती है. सो देन दे थॉट कि मे बी नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू स्टॉप एंड सी हाउ माय बॉडी इज रिएक्टिंग विदाउट द मेडिकेशन. आप तो फिर भी कम खा रहे हैं, मैं तो 1000 mg रोज की खा रही थी. सो आई वाज ऑन अ वेरी हाई डोजेज ऑफ मेडिसिन. सो दैट योर डॉक्टर ओनली कैन गाइड. सो शी इज, प्लीज आप उनसे एक बार कंसल्ट करें. एनीथिंग एल्स आई एम हैप्पी टू हेल्प. या इसके बाद भी कभी आप मेरे से कुछ बात करना चाहें या कुछ और भी करना चाहें, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन फोन 24/7. कभी भी आप मेरे को कर सकते हैं. आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट.
जी मैम. एंड मैम, सुशील जी से इसी क्वेरी के रिगार्डिंग एक और क्वेरी है कि अगर ये पैल्बेस हम काफी टाइम तक यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उससे हैबिचुअल हो जाते हैं या उसकी आदत लग जाती है और फिर वो बेनिफिट नहीं देता?
देखिए, ये कई मेडिसिन में होता है कि वो बॉडी को कम कर देती है. अब जैसे मेरी मेडिसिन में मेरे काउंट्स कम हो जाते थे कभी कभी, तो मेरा डॉक्टर मुझे 15 दिन के गैप पे डाल देता था. तो मेरे काउंट बढ़ते थे, उसके बाद मैं वापस मेडिसिन शुरू करती थी. तो मेरा भी यही कंसर्न था कि इसके बाद क्या, कि मेरी भी बॉडी यूज टू हो जाएगी इस दवाई से, तो मेरे को भी दवाई असर नहीं करेगी. बट दे आर द बेस्ट जज. तभी उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आके उन्होंने बंद कर दी, या वो ड्रग चेंज कर देते हैं कि आपकी बॉडी यूज टू ना हो उस चीज को लेके. तो उस तरीके से इनका प्रोटोकॉल डॉक्टर्स का चलता है. अब आपका डॉक्टर जैसे आपको सजेस्ट करेगा, इट इज बेटर कि आप उनके सजेशन से ही चलिए, या ज्यादा आपको लगे तो आप एक सेकेंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से भी ले सकते हो.
थैंक यू सो मच अलीशा मैम. एंड गीता मुनि जी, मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपने क्वेश्चन डाला है कि आपको सजेशन चाहिए कि आपको चेन्नई में कौन से हॉस्पिटल पे जाना चाहिए. उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर किया है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट कराएंगे एंड चेन्नई में जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उन सबका इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे. मैंने नंबर फिर से शेयर कर दिया है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड रविकांत तिवारी जी ने भी हैंड रेस किया है. सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप शेयर कर सकते हैं. रविकांत जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप जो शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं. आई थिंक अभी रविकांत जी अवेलेबल नहीं है.
अच्छा दे, ये गीता मोनी जी जो है, इनका एक और क्वेश्चन था उसी उसमें फिलोसफी बात के ऊपर क्वेश्चन था इनका. राइट गीता जी, इफ आई एम रीडिंग इट राइटली, आपका फिलोसफी बैग लगा हुआ है. मैम जो आपको साइड से जो आप बोल रहे हैं, आपको जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है मैम, इसमें या तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अब जो कोलोस्टोमी बैग्स आ गए हैं ना, अब बहुत ज्यादा अच्छे हाई लेवल के बैग्स भी आ गए हैं जिसमें से लीकेज या ब्लीडिंग होना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप्स ऑफ है. पर अब फिर भी जहाँ आपको ये हो रही है ना, आप एक बार जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ये क्यों हो रहा है. और जो आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, मैं फिर वही बोलूंगी आयुर्वेदिक लीजिए, बट प्लीज अपना कीमो उसके साथ लीजिए. जहां तक आपका बाकी भी मैं पढ़ रही हूँ, एनी हेल्प इफ दे कैन आस्का, कैन यू एग्जैक्टली रीड हर क्वेश्चन प्राइवेटली एंड गाइड हर. बस हम लोगों की ICS टीम हेल्प करती है, जिनका यहाँ ट्रीटमेंट होता है राजीव गांधी में, दे हेल्प पीपल जिनको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है वंस दे फिल अप द फॉर्म्स एंड ऑल. सो वी गिव पीपल सम फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अगर की तुम्हें जी आप दिल्ली में ही हैं तो आप जरूर मेरे को बताइए, आई विल ट्राई एंड कनेक्ट गेट यू कनेक्टेड विद माय ICS टीम एंड यू कैन ऑलवेज टॉक टू देम, और जो भी होगा दे कैन ऑलवेज गाइड यू इन द प्रॉपर वे कि आप कैसे आगे चल सकती हैं उसके लिए. सो इफ यू आर इन दिल्ली, आई डोंट नो इफ यू कैन आंसर दैट कि आप दिल्ली में हैं कि नहीं. तो ICS आई थिंक बहुत सारी जगहों पे है, नॉट ओनली इन दिल्ली बट काफी सारी जगहों पे है.
मैम गीता मुनि जी ने बताया है कि वो आसाम से हैं.
आसाम से हैं, ओके. तो आसाम आई विल चेक विद माय ICS टीम, अगर वो उनका वहां पे कुछ लिंकअप या कुछ टाइप है तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड यू कैन ऑलवेज कन्वे माय मैसेज एंड एनी हेल्प दैट वी कैन डू फ्रॉम आवर पार्ट.
श्योर मैम. एंड गीता मुनि जी, जैसे आपको मैंने हमारा भी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है, आपको जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं. एंड हाँ जी रविकांत तिवारी जी, आपने हैंड रेज किया है फिर से, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. रविकांत जी अभी अवेलेबल नहीं है. राइट मैम. सो मैम इसी के साथ हम लोग अपना सेशन भी एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं. सो थैंक यू सो मच मैम आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमें इंस्पायर करने के लिए. एंड आई एम श्योर कि इससे काफी सारे कैंसर पेशेंट्स की हेल्प हुई होगी एंड उन्हें गाइडेंस भी मिली होगी. एंड यही तो खासियत है इन हीलिंग सर्कल सेशंस की, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी केयर गिवर्स हैं, उन्हें दूसरों से इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, इतनी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अ सेशन मैम.
थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड आई लव्ड इट, बिकॉज मेरे को खुद को ऐसी बात करके मेरे को और पॉजिटिविटी और बहुत स्ट्रेंथ मिलती है. मैं तो एनी टाइम एनी हेल्प अगेन आगे भी डिम्पल जी अगर कभी भी आपको कुछ चाहिए हो आई एम ऑलवेज देयर. मतलब आई फील गुड बिकॉज़ आई हैव सीन माय मदर डूइंग दिस फॉर पास्ट 25-30 इयर्स सो आई हैव लर्न्ड ऑल दिस फ्रॉम हर. तो मैं कभी भी हेल्प कर पाऊँ सॉरी किसी भी की किसी भी सेंस में सो प्लीज डेफिनेटली लेट मी नो.
थैंक यू. थैंक यू सो मच अलीशा. एंड देर इज वन क्वेश्चन केयरगिवर ग्रुप के लिए. सो मैंने यहाँ पे आप सबके साथ में ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप का लिंक शेयर किया है. सो आप लोग इस पे लिंक पे क्लिक करके सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और भी कैंसर वाइज एंड काफी सारे सपोर्ट ग्रुप्स है बट ये स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए है. सो या एंड एनीबडी वॉन्ट्स टू से एनीथिंग.
यस मैम अभी नरेश जी ने हैंड रेज किया है. नरेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ.
गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैन यू प्लीज सजेस्ट अ गुड ऑन्कोलॉजिस्ट इन दिल्ली और इन लखनऊ बिकॉज़ आई एम लिविंग इन कानपुर एंड आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम मुंबई सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मी फॉर ट्रैवल टू टेक माय वाइफ विद मी. सो कैन यू प्लीज सजेस्ट समवन a good oncologist MD.
Right. So Naresh ji, what we'll do in this case, oncologist, which type of oncologist first we need to see that, surgical, medical, radiation, and also we need to see that what cancer it is and what stage it is and what treatment you have taken. Accordingly, mm-hmm. the type of oncologist you will meet will differ. So what we will do, aapka jo areas hai, Lucknow, Delhi, jo bhi Kanpur aapne bataye hain, वहां पे जो भी आपकी सिचुएशन केस के हिसाब से जो ऑन्कोलॉजिस्ट है जो मैच करेंगे हम लोग आपका उसका डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे. आप अपना इफ यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर और यू कैन शेयर योर नंबर आल्सो इन द चैट एंड द टीम विल गाइड यू टू द ऑन्कोलॉजिस्ट.
आई शेयर माय नंबर इन द चैट.
या
थैंक यू.
थैंक यू.
अभिमन्यु जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं. अभिमन्यु जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ.
जी मैम गुड इवनिंग. मैम
गुड इवनिंग.
मेरा बेटा तो क्या नाम अभी बेड रेस्ट पर ही है. डॉक्टर से नेम सब मना कर दिया है और मैं मीटिंग में भी ज्वाइन नहीं कर पाती. मैम थोड़ा सा काम पे भी जाती हूँ तो अभी जल्दी जल्दी में आज ही पता चला मैम मेरे को क्योंकि मोबाइल देख नहीं पाती. तो क्या करना चाहिए मैम. मुझे बच्चे को भी दिखा रही हूँ मैं ये मेरा बेटा. अप्रैल में मना कर दिया गया था मैम उसको कि थोड़े दिन का ही मेहमान है लेकिन अभी भी बेटा मतलब जैसे पहले कंडीशन थी वैसी है आज. और मतलब पहले उसने ऑक्सीजन से सांस ले रहा था अब तो पहले से थोड़ा सा बेहतर है.
तो मैम आप प्लीज पहले तो उनके सामने ये मत बोलिए कि थोड़े दिनों के मेहमान है. वो बिल्कुल भी नहीं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे. पहले तो आप अपनी ये प्लीज सोच बदलिए कि आप उनके सामने तो ऐसा कुछ भी मत बोलिए.
जी मैम जी.
नहीं वो बहुत जल्दी उनकी उनकी भी तो विल पावर है जिससे वो लड़ सकते हैं. आप उनके सामने ऐसा करेंगे तो वो कैसा लड़ेंगे मैम. प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है. मैं आपसे बहुत छोटी हूँ. मैं 38 इयर्स की हूँ खाली. मैं 31 की थी जब प्रॉब्लम हुई थी. प्लीज आप ऐसे मत सोचिए बिल्कुल भी. थोड़ी सी ताकत आप भी रखिए तो आपकी ताकत देख के उनको ताकत मिल जाएगी.
जी मैम. तो मैम मुझे क्या करना चाहिए. इसकी दवाइयाँ चल रही पैजनिप चल रही बस जो सबसे वैसी है. और मैं क्या कर सकती हूँ मैम. जब डॉक्टर से नहीं ऐसा कह दिया है तो मैं और क्या कर सकती हूँ उसके लिए.
हम लोग एक काम करेंगे इसके लिए. सॉरी आपका नाम पता नहीं इसमें अभिमन्यु सिंह लिखा हुआ आ रहा है. तो जी हम लोग एक काम करेंगे. आप जो आपके साथ हमें वन ऑन वन कनेक्ट करना पड़ेगा. आपके साथ अलग से बात करना पड़ेगा कि उनका क्या कंडीशन है अभी क्या है. बट जैसे उन्होंने बताया अलीशा जी ने कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है नेगेटिवली है ना. क्योंकि लोग बेडरेस से भी ठीक होके वापस आए हैं तो जब वो आ सकते हैं तो आपका बेटा भी डेफिनेटली वापस आ सकता है ना. तो हाँ तो वो अपनी बैटल लड़ाई अपनी फाइट कर रहे हैं. आपको अपनी फाइट करनी है राइट. सो जो भी डॉक्टर्स है अपना बेस्ट ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं. हमें उनको बस कम्फर्ट में रखना. उन्हें पेन नहीं होना चाहिए क्योंकि पेन से थोड़ा स्ट्रगल होता है राइट. तो उसमें उनको कंफर्ट में कैसे रख सकते हैं? आपको भी उनके सामने अगर आप रोएंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि मेरी मम्मी मेरे सामने, मदर मेरे सामने रो रही है, तो उनको ज्यादा दुख होगा, उनको कैंसर से जितना तकलीफ नहीं होगा जितना आपके रोने से तकलीफ होगा। तो मैं आपको है ना किसी किसी केयर गिवर से या किसी सर्वाइवर से भी कनेक्ट करवाऊंगी, तो आपको अपना जो भी शेयर करना है, जो भी आपके मन में है, आप उनके साथ शेयर करिए। आपको जितना रोना है आप उनके सामने रो लीजिए, बट जितना आप खुद को बेटे के सामने स्ट्रांग रखेंगे, जितना वो अच्छा रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि अभी उनकी होप हमेशा होती है ना, तो वो होप हमें हमेशा बरकरार रखनी है। और जो भी आपको जिस भी चीज की जरूरत है आप बस हमें बता दीजिएगा। आपको
आपके पास कनेक्ट विद हर वन ऑन वन इफ यू डोंट माइंड।
या डेफिनेटली अलीशा, आई विल कनेक्ट यू। मेरे पास इनका नंबर नहीं है, आप अपना नंबर दे देंगे तो मैं आपको अलीशा जी से कनेक्ट करवा दूंगी।
मैम मेरा नंबर 9 है।
हाँ बोलिए। 9 8
37
हाँ
74
हाँ
5301।
ठीक है, आपका नाम बताएंगे प्लीज।
बबली रावत मैम, हरिद्वार।
ठीक है, तो मैं आपको अलीशा जी से भी कनेक्ट करवा दूंगी। एंड जैसा किसी मेंबर ने भी लिखा है कि आप बिल्कुल हिम्मत रखिए और सब कुछ सही होगा, है ना? तो उस रास्ते पे कैसे चलना है, क्या करना है, वो हम आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, आप ध्यान
थैंक यू
रखिए
सर।
अपना। नो
थैंक
प्रॉब्लम,
यू।
नो प्रॉब्लम। या थैंक यू।
I have seen one of the same case in my hospital, Dimple. ऐसे ही था, मतलब वो फैमिली इतनी डिसअपॉइंटेड थी। देन हमने फिर उनको भी समझाया कि आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो। वी हैव सीन पीपल कमिंग बैक फ्रॉम द डेथ बेड, लिटरली वी हैव सीन पीपल, तो आप क्यों होप छोड़ रहे हैं? बाय चांस हम तो उनको ये बोलते हैं अगर पेशेंट के अंदर 0.1% भी होप है ना, तो वो आपको ऐसा देखे तो वो बिल्कुल अपनी होप छोड़ देते। तो प्लीज आप ये मत करिए उनके सामने, मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैं बाकी सबसे भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज पेशेंट के अंदर भी एक होप होती है कि मुझे ठीक होना है, मुझे इनके लिए खड़े होना है, जैसे मेरे अंदर थी कि मुझे अपने बच्चों के लिए खड़े होना है और मैं खड़ी हुई। तो उनके अंदर भी हो सकती है कि मुझे इनके लिए खड़े होना है, मुझे बिल्कुल ठीक होना है। तो प्लीज आप लोग कोई भी हो उनके सामने ये मत करिए, उनको जितना खुश रख सके उनको उतना खुशी दे और खुश रखे।
वेरी ट्रू। ठीक है, आस्था ओवर टू यू।
यस मैम। तो मैम हमने हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। दीपक जी कुछ बोलना चाहते हैं? दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
हेलो हेलो
हेलो दीपक जी, हम आपको सुन सकते हैं?
अरिजा जी आपने बताया कि आपका कहाँ से आपको ये कैंसर हुआ है, वो अभी तक डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाए?
नहीं, ये तभी डिटेक्ट होता है जब आपकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी के साथ एक और टेस्ट होता है जिसमें बायोप्सी स्लाइड के साथ ही आपका सोर्स पता लग सकता है, बट उस टाइम मेरे डॉक्टर ने ऐसी कोई टेस्ट नहीं किया था, तो मेरे को आज तक मेरा सोर्स नहीं।
बराबर ना, इंडिया में तो इतना केस नहीं है जितने जो बाहर है। इंडिया तो बहुत पीछे है ब्रेस्ट कैंसर में, अमेरिका में से हम लोग 20 गुना पीछे हैं इस टाइम। लेकिन हम लोग को सबको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। जैसे फिलीपींस में है, एवरी 13 वुमन में एक वुमन को ब्रेस्ट कैंसर है इस टाइम।
बिल्कुल,
अवेयरनेस मेन जरूरी है,
सबसे ज्यादा जरूरी ही अवेयरनेस है सर इस टाइम पे।
और ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर, आप इसको बीट कर सकते हैं, ये श्योर है।
जी बिल्कुल, यही एक ताकत है हमारे पास जो हमें इस दुनिया में किसी हर चीज से फाइट करने की देती है, हमारी अपनी विल पावर और अपनी ही स्ट्रेंथ।
सही बात है, मेन खुद के विल पावर से आप इसको बीट कर सकते हैं, वो तो मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ।
जी बिल्कुल,
जी को मालूम है।
जी बिल्कुल अभिमन्यु जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी विल पावर उतनी ही पक्की रखिएगा और उतनी ही स्ट्रांग रखिएगा कि आपको कोई चीज हरा नहीं सकती। बस ऐसी ही स्माइल हम आपके फेस पे हमेशा देखना चाहेंगे, जैसे आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, प्लीज ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे अपनी विल पावर के साथ। बस आपका डॉक्टर जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाए, और ऐसी हंसी कभी भी मत छोड़िएगा मम्मी के सामने, तो ऐसे ही स्माइल करके रखिएगा हमेशा।
थैंक यू मैम इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए। हाँ जी, तो हमारे क्वेश्चंस हमने सारे कवर अप कर लिए हैं, कोई और कुछ डिस्कस करना चाहता है? या सो थैंक यू सो मच अलीशा मैम, आपने काफी अपनी लर्निंग्स बताई, काफी लोग इंस्पायर हुए हैं, डेफिनेटली सबकी हेल्प होगी, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
थैंक यू अलीशा, थैंक यू एवरीवन, एंड बहुत सारी प्रेयर्स ब्लेसिंग्स सबके लिए जो इस जर्नी से भी निकल रहे हैं। बबली जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपने अपने बेटे को अभी हमें दिखाया, हम सबकी प्रेयर्स उनके साथ में हैं और हम सब प्रे करेंगे कि वो ठीक हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन, एंड जो लोग भी इस जर्नी से निकल रहे हैं, वी प्रे फॉर ऑल ऑफ देम दैट दे गेट बेटर एंड फैमिली के स्ट्रेंथ टू गो थ्रू दैट जर्नी। केयर गिवर की जर्नी उतनी ही मुश्किल होती है जितनी पेशेंट की होती है। आज उनकी मदर के फेस पे हमें वो पेन दिख रहा है, सो एवरीबडी गेट स्ट्रेंथ टू गो थ्रू दिस एंड वी ऑल आर टूगेदर इन दिस। किसी को कुछ भी कभी भी सपोर्ट चाहिए, कभी भी आप रीच आउट कर लीजिए, एंड देर आर मेनी वंडरफुल पीपल हु वॉन्ट टू हेल्प ईच अदर, सो मेनी मेनी प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। थैंक यू,
थैंक यू सो मच एवरीवन,
थैंक यू,
एंड हम आशा करते हैं। हाँ
जी, यस आस्था,
या सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हम आशा करते हैं कि आप नेक्स्ट हीलिंग सर्कल में भी ज्वाइन करेंगे। आप इसी लिंक के थ्रू नेक्स्ट सैटरडे 5 बजे वापस हमारे हीलिंग सर्कल टॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन,
थैंक यू, थैंक यू आस्था, थैंक्स अलीशा,
थैंक यू सो मच।